इन मुनि की आकृति को देखकर राजा जन को यह अपमान हुआ कि यह ब्राह्मण अत्यंत ही कुरूप है। तब सब चित का वृतांत जानने वाले अष्टावक्र जी राजा के मन का विचार दिव्य दृष्टि के द्वारा जानकर जनक से बोले कि हे राजन, देह दृष्टि को छोड़कर आत्म दृष्टि करो। यह देह टेढ़ा है परंतु आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी टेढ़ी होती है परंतु जल टेढ़ा नहीं होता है और इक्षु गन्ना टेढ़ा होता है परंतु रस टेढ़ा नहीं होता है, इसी प्रकार यद्यपि पांच भौतिक देह टेढ़ा है परंतु आत्मा टेढ़ा नहीं है, किंतु आत्मा असंग निर्विकार व्यापक ज्ञान घन सच्चिदानंद स्वरूप अखंड अछेद अभेद नित शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव है। इस कारण हे राजन, तुम देह दृष्टि को त्याग कर आत्मा दृष्टि करो। परम दयालु अष्टावक्र जी के इस प्रकार के वचन सुनने से राजा जनक का मोह दूर हो गया। तब तो राजा जनक यह विचारने लगे कि मेरे मनोरथ सिद्ध हो गए। मैं अब इनकी गुरु करूंगा, क्योंकि यह महात्मा ब्रह्म विद्या के समुन्दर रूप हैं, जीवन मुक्त हैं। अब इनसे अधिक ज्ञानी मुझे कौन मिलेगा? अब तो इनसे गुरु दीक्षा लेकर इनकी ही शरण लेना योग है। इस प्रकार विचार कर राजा जनक अष्टावक्र जी से इस प्रकार बोले कि हे महात्मन, मैं संसार बंधन से छूटने के निमित्त आपकी शरण लेने की इच्छा करता हूँ। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक को अधिकारी समझकर अपना शिष्य कर लिया। तब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के निमित्त और ब्रह्म विद्या के श्रवण करने की इच्छा करके अष्टावक्र जी से पूछने लगे, हे प्रभु, पुरुषा ज्ञानम कथम आवनोति, पुंसा मुक्ति कथम भविष्यति, पुंसा वैराग्यम च कथम प्राप्तम भवति इतत् मम ब्रूहि। अष्टावक्र जी से राजा जनक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, विद्या करके मोहित नाना प्रकार के मिथ्या संकल्प विकल्पों करके बारंबार जन्म मरण रूप दुखों को भोगने वाले इस पुरुष को अविद्या निवृत्ति रूप ज्ञान वैराग्य तथा मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हुए है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कृपा करके कहिए। इस प्रकार राजा जनक के प्रश्न करने पर ज्ञान भगवान सुपन परम दयालु अष्टावक्र मुनि ने विचारा कि जय पुरुष अधिकारी है संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मेरे समीप आया है। इस कारण इसको साधन चतुष्टय पूर्वक ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं। साधन चतुष्टय के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती है। इस कारण शिष्य को प्रथम साधन चतुष्टय का उपदेश करना योग्य है। सोई व्यास जी ने भी कहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म ज्ञान के विषय की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार कर अष्टावक्र जी बोले के हेतात चेत मुक्तम इच्छसी त्रहि विषयान विश्वत अवगत त्यज कुशमार जब द्यातो सुसतम पीयूषवत अवगत भज। हेतात हे शिष सुपूरण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति रूप मुक्ति की इच्छा हुए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इन पांच विषयों का त्याग कर दे। ये पांच विषय करण त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका इन पांच ज्ञान इंद्रियों के हैं। यह संपूर्ण जीव के बंधन हैं। इनसे बंधा हुआ जीव उत्पन्न हुए है और मरे है तब बड़ा दुखी हुए है। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले पुरुष को दुख हुए है तीसरी प्रकार शब्द आदि विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात शब्द आदि विषय महा अनर्थ का मूल हैं। उन विषयों को तुम त्याग दे। अभिप्राय यह है कि दे आदि के विषय में हूँ मेरा है इत्यादि अध्यास मत करे। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों को दमन करने का उपदेश करा। जो पुरुष इस प्रकार करता है ये उसको दम नाम वाले प्रथम साधन की प्राप्ति होती है और जो अंतःकरण को वश में कर ले है उसको शम नाम वाली दूसरी साधन संपत्ति प्राप्त होती है और जिसका मन अपने वश में हो जाता है उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है। उसका नाम वेदांत शास्त्र में निर्विकल्प समाधि कहा है। उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति के अर्थ क्षमा सब सह लेना और जब अविद्या रूप दोष से निवृत्त रखना दया बिना कारण ही प्रायः दुख दूर करने की इच्छा तोष सदा संतुष्ट रहना सत त्रिकाल में एक रूपता इन पांच सात्विक गुणों का सेवन कर। जिस प्रकार कोई पुरुष अमृत तुल औषधि सेवन करे है और उस औषधि के प्रभाव से उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं इसी प्रकार जो पुरुष अमृत तुल इन पांच गुणों को सेवन करता है उसके जन्म मृत्यु रूप रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात इस संसार के विषय जिस पुरुष को मुक्ति की इच्छा हुए वह विषयों का त्याग कर दे। विषयों का त्याग करे बिना मुक्ति कदाप नहीं होती है। मुक्ति अनेक दुखों की दूर करने वाली और परमानंद की देने वाली है। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि ने प्रथम शेष को विषयों को त्यागने का उपदेश दिया। अब मुनि साधन चतुष्टय सुपन्न शिष्यों को मुक्ति का उपदेश करे हैं। तहां शिष्य शंका करे है कि हे गुरु, पंचभूतों का शरीर ही आत्मा है और पंचभूतों के ही पांच विषय हैं, सो इन पंचभूतों का जो स्वभाव है उसका कदाप त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी से गंध का या गंध से पृथ्वी का कदाप वियोग नहीं हो सके हैं, किंतु वह दोनों एक रूप होकर रहते हैं। इसी प्रकार रस और जल, अग्नि और रूप, वायु और स्पर्श, शब्द और आकाश हैं, अर्थात शब्द आदि पांच विषयों का त्याग तो तब हो सके है जब पंचभूतों का त्याग हुए, और यदि पंचभूतों का त्याग हुए तो शरीर पात हो जाएगा, फिर उपदेश ग्रहण करने वाला कौन रहेगा तथा मुक्ति सुख को कौन भोगेगा, अर्थात विषय त्याग तो कदाप नहीं हो सकता। इस शंका का निवारण करने अर्थ अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं। हे शिष्य, भगवान पृथ्वी न जलमना अग्नि न भजू न बा द्यो न येषाम साक्षणम चिद्रूपम आत्मानम मुक्ते विधे। हे शिष्य, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा इनके धर्म जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध सो तू नहीं है, इस पांच भौतिक शरीर के विषय तू अज्ञान से अहं भाव मैं हूँ मेरा है इत्यादि मन्य है, इनका त्याग कर अर्थात इस शरीर के अवमान का त्याग कर दे और विषयों को अनात्म धर्म जानकर त्याग कर दे। अवशेष इस विषयों में फिर शंका करे है के हे गुरु, मैं गौर वर्ण हूँ, सुथूल हूँ, कृष्ण वर्ण हूँ, रूपवान हूँ, पुष्ट हूँ, कुरूप हूँ, काना हूँ, नीच हूँ, इस प्रकार की प्रतीति इस पांच भौतिक शरीर में अनादि काल से सब ही पुरुषों को हुए है, फिर तुमने जो कहा है कि तू देह नहीं है सो इससे क्या युक्ति है। तब अष्टावक्र बोले कि हे शिष्य, अभिव्यक्ति पुरुष को इस प्रकार प्रतीति हुए है, विवेक दृष्टि से तू दे इंद्रिय आदिक का दृष्टा और दे इंद्रिय आदि से पृथक हैं। जिस प्रकार काट को देखने वाला पुरुष काट से पृथक होता है, इसी प्रकार आत्मा को भी सर्वदोष रहत और सबका साक्षी जान, इस विषय में न्याय शास्त्र वालों की शंका है कि साक्षीपना तो बुद्धि में रहे है, इस कारण बुद्धि ही आत्मा हो जाएगी। इसका समाधान यह है कि बुद्धि तो जड़ है और आत्मा चेतन मना है, इस कारण जड़ जो बुद्धि सो आत्मा नहीं हो सके है, तो आत्मा को चैतन्य स्वरूप जान। तहां शेष प्रश्न करे है कि हे गुरु, चैतन्य रूप आत्मा के जानने से क्या फल हुए है सो कहिए। तिसके उत्तर में अष्टावक्र जी कहे हैं कि साक्षी और चेतन जो आत्मा, तिस को जानने से पुरुष जीवन मुक्त पद को प्राप्त हुए है, यही आत्मा ज्ञान का फल है। मुनि का स्वरूप किसी के विचार में नहीं आया है। खट शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मुक्ति के स्वरूप की कल्पना करे हैं। न्याय शास्त्र वाले इस प्रकार कहे हैं कि दुख मात्र का जो अत्यंत नाश है वही मुक्ति है, और बलवान परवाह कर मत अवलंबी। मीमांसकों का इस प्रकार कथन है कि समस्त दुखों के उत्पन्न होने से पहले जो सुख है वही मुक्ति है। बौद्ध मत वाले वालों का यह कथन है कि देह का नाश होना ही मुक्ति है। इस प्रकार भिन्न भिन्न कल्पना करे हैं, परंतु यथार्थ बोध नहीं होता है। किंतु वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मज्ञान ही मुक्ति है। इस कारण अष्टावक्र मुनि शिष को उपदेश करे हैं, हे शिष, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम में तिष्ठसि तहिर अधुना एव सुखी शांता बंध मुक्ता भविष्यसि। हे शिष, यदि तू देह तथा आत्मा को विवेक करके अलग जानेगा और आत्मा के विषय विश्राम करके चित्त को एकाग्र करेगा तो तू इस वर्तमान ही मनुष्य देह के विषय सुख तथा शांति को प्राप्त होएगा, अर्थात बंधन मुक्त कहिए कर्तव्य कर्तापना भोगतृभ भोगतापना आदि अनेक अनर्थों से छूट जाएगा। शेष प्रश्न करे हैं कि हे गुरु, मैं तो वर्ण आश्रम के धर्म में हूँ, तिस कारण वर्ण आश्रम कर्म का करना योग्य है, अर्थात वर्ण आश्रम के कर्म करने से आत्मा के विषय विश्राम करके मुक्ति किस प्रकार होएगी, तिसका गुरु समाधान करे हैं। त्वं विपराधकः वर्ण न आश्रमी न अक्षय गोचरा न किंतु त्वं असंग निराकारा विषग साक्षीयसि, अतः कर्माशक्तम विहाय चिति विश्राम सुखी भव। तू ब्राह्मण आदि नहीं है, तू ब्रह्मचारी आदि किसी आश्रम में नहीं है। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष हुए हैं, इस कारण आत्मा ही वर्णाश्रमी है। तहां गुरु समाधान करे हैं कि आत्मा का इंद्रिय तथा अंतःकरण करके प्रत्यक्ष नहीं हुए है, और जिसका प्रत्यक्ष हुए है वह देह है। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि मैं क्या वस्तु हूँ, तहां गुरु समाधान करे हैं कि तू असंग अर्थात देह आदक उपाधि तथा आकार रहत विश्व का साक्षी आत्मा स्वरूप है, अर्थात तेरे में वर्ण आश्रमपना नहीं है। इस कारण कर्मों के विषय आसक्ति न करके चैतन्य रूप आत्मा के विषय विश्वास करके परमानंद को प्राप्त हो। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि वेद उक्त वर्ण आश्रम के कर्मों को त्याग कर आत्मा के विषय विश्वास करने से करने में भी तो अधर्म रूप परतुआए हुए है, तिसका गुरु समाधान करे हैं। हे विभो, धर्म धर्मो सुखम दुखम मांस मान सानी ते ना त्वं कर्ता न असि भोगता न असि किंतु सर्वदा मुक्त एव असि। हे शिष, धर्म धर्म सुख और दुख जय तु मन का संकल्प है, तिस कारण तिन धर्माधर्म आदि के साथ तेरा त्रिकाल में भी संबंध नहीं है। तू कर्ता नहीं है, तू भोगता नहीं है, क्योंकि बेहत अथवा निषिद्ध कर्म करता है वही सुख दुख भोगता है, सो तुझ में नहीं है, क्योंकि तू तो शुद्ध स्वरूप है और सर्वदा काल मुक्त है। अज्ञान करके पासने वाले सुख दुख आत्मा के विषय आश्रय करने करके ही निवृत्त हो जाते हैं। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि शुद्ध बुद्ध एक नित मुक्त ऐसा जो आत्मा है, तो इसका बंधन किस निमित्त से हुए है, कि इस बंधन के छुड़ाने के अर्थ बड़े बड़े योगी पुरुष यत्न करे हैं, तहां गुरु समाधान करे हैं। हे शेष त्वम सर्वस्य दृष्टा एका असि सर्वदा मुक्त प्राय असि हे ते एम ए बंधा यम दृष्टरम इत्रम पश्यसि। हे शेष तू अद्वितीय सर्व साक्षी सर्वदा मुक्त हैं, तू तो दृष्टा को दृष्टा न जानकर अनजाने हैं, यही बंधन है। सर्व प्राणियों में विद्यमान आत्मा एक ही है और अभिमानी जीव के जन्म जन्मांतर ग्रहण करने पर भी आत्मा सर्वदा मुक्त है। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि फिर संसार बंधन क्या वस्तु है, तो इसका गुरु समाधान करे हैं कि यह प्रत्यक्ष देवमान ही संसार बंधन है, अर्थात जय कार्य करता हूँ जय भोग करता हूँ इत्यादि ज्ञान ही संसार बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है, तथापि देह और मन के भोग को आत्मा का भोग मानकर बद्ध सा हो जाए है। यहाँ पर्यंत बंध हेतु का वर्णन करा, अब अनर्थ के हेतु का वर्णन करते हुए अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद के उपाय का वर्णन करते हैं। हे शिष्य अहम कर्ता इति अहम मान मान महा कृष्ण ही दंशता त्वम अहम कर्ता न इति विश्व सा मृतम पीतवा सुखी भव। मैं करता हूँ इस प्रकार अहंकार रूप महा काले सर्प करके तू काटा हुआ है, इस कारण मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार विश्वास रूप अमृत पी करके सुखी हो। आत्मा अभिमान रूप सर्प के विष करके ज्ञान रहत और जर्जरी भूत हुआ है। यह बंधन जितने दिनों पर्यंत रहेगा तब तक किसी प्रकार सुख की प्राप्ति नहीं होएगी। जिस दिन यह जानेगा कि मैं देह आदि कोई वस्तु नहीं हूँ, मैं निर्लिप्त हूँ, उस दिन किसी प्रकार मोह स्पर्श नहीं कर सकेगा। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि आत्मा ज्ञान रूपी अमृत पान किस प्रकार करूं, तहां गुरु समाधान करे हैं कि हे शेष अहम विशुद्ध बोधा एका अस्मि इति निश्चय बन्हिना अज्ञान गहनम पर ज्वालम ज्वाल्य बीत शोक का सन सुखी भव। हे शिष्य मैं एक हूँ, अर्थात मेरे विषय सजाति विजाति का भेद नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है, केवल एक विशुद्ध बोध और स्वप्रकाश रूप हूँ। निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को भस्म करके शोक मोह राग द्वेष प्रवृत्ति जन्म मृत्यु इनके नाश होने पर शोक रहित होकर परमानंद को प्राप्त हो। तहां शेष शंका करे हैं कि आत्मा ज्ञान करके अज्ञान रूपी बन के भस्म होने पर भी सत रूप संसार की ज्ञान से निवृत्ति न होने के कारण शोक रहित किस प्रकार होऊंगा, इसका गुरु समाधान करे हैं के यत्र इदं विश्वम रजु सर्पवत कल्पतम बातीसा अनंत परमानंदा बुद्धा त्वम सुखम चर। ये शिष्य जिस प्रकार रज्जु के विषय सर्प की प्रतीति होए है और उसका भ्रम प्रकाश होने से निवृत्त हो जाए है, इसी प्रकार ब्रह्म के विषय जगत की प्रतीति अज्ञान कल्पित है, जय ज्ञान होने से नष्ट हो जाए है। तू ज्ञान रूप चेतन आत्मा है, इस कारण सुखपूर्वक विचर। जिस प्रकार स्वप्न में किसी पुरुष को सिंह मारता हुए तो वह बड़ा दुखी हुए है, परंतु निंद्रा के दूर होने पर उस कल्पित दुख का जिस प्रकार नाश हो जाए है, तिस प्रकार तू ज्ञान से अज्ञान का नाश करके सुखी हो। तहां शेष प्रश्न करे हैं कि हे गुरु, दुख रूप जगत अज्ञान करके प्रतीत हुए है और ज्ञान करके उसका नाश हो जाए है, परंतु सुख किस प्रकार प्राप्त हुए है, तिसका गुरु समाधान करे हैं कि हे शेष, जब दुख रूपी संसार के नाश होने पर आत्मा स्वभाव से ही अनंत स्वरूप हो जाए है, मनुख लोक से तथा देवलोक से आत्मा का आनंद परम उत्कृष्ट और अत्यंत अधिक है, सोई श्रुति में भी कहा है। शिष्य शंका करे है कि यदि संपूर्ण संसार रज्जु के विषय सर्प के समान कल्पित है, वास्तव में आत्मा परमानंद स्वरूप है, तो बंद मोक्ष किस प्रकार हुए है, तहां गुरु समाधान करे है। एहे मुक्ता मनी मुक्ता अपि बध मनी बधा हे या मति सा गति भवेत एम किं बदन्ति सत्या। हे शिष्य, जिस पुरुष को गुरु की कृपा से यह निश्चय हो जाए है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त है, और जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं होती है और वह यह जाने है कि मैं अल्पग जीव और संसार बंधन में बंधा हुआ हूँ, वही बद है, क्योंकि बंध और मोक्ष अवमान से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात मरण समय में जैसा अभिमान होता है वैसी ही गति होती है। यह बात श्रुति स्मृति प्राण और ज्ञानी पुरुष प्रमाण मानते हैं कि मरणे या मति सा गति, सोई गीता में भी कहा है, यम यंग बापी स्मरण भावं त्यायन्ते क्लेवरम तंत मेवेति कुंते सदा तद्भाव भावता। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण उपदेश करे हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ पुरुष शरीर को त्याग है, तिस तिस भावना से तिस तिस गति को प्राप्त हुए है। श्रुति में भी कहा है कि तं विद्या कर्मणि संसार भेते पूर्व प्रज्ञा च, इसका भी यही अभिप्राय है, और बंध तथा मोक्ष अवमान से होते हैं, वास्तव में नहीं, यह वार्ता पहले कह आए हैं, तथापि दूसरी बार कहना शिष्य को बोध होने के अर्थ इस कारण कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान अत्यंत कठिन है, जीवात्मा के बंध और मोक्ष परमार्थक हैं। इस तार्तक की शंका को दूर करने के निमित्त कहे हैं कि साक्षी विभु पूर्णा एका मुक्ता चित अक्रिया असंगा निष्प्रिया शांता आत्मा भ्रमात् संसारवान ए भति, अर्थात अज्ञान करके देह को आत्मा मना है, तिस का कारण वह संसार संसारी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में संसारी नहीं, क्योंकि आत्मा तो साक्षी है और अहंकार आदि अंतःकरण के धर्म को जानने वाला है, और विभु अर्थात नाना प्रकार का संसार जैसे उत्पन्न हुआ है, सर्व का अधिष्ठान है, संपूर्ण व्यापक है, एक अर्थात स्वगातादि तीन भेद करके रहत है, और मुक्त अर्थात माया का कार्य जो संसार तिसके बंधन करके रहत चेतन स्वरूप अक्रिय असंग और निष्प्रिय अर्थात विषय की इच्छा करके रहत है, और शांत अर्थात प्रकृति निवृत्ति रहत है। इस कारण वास्तव में आत्मा संसारी नहीं है। मैं देह रूप हूँ, स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, यह अनादि काल का अज्ञान एक बार आत्मा ज्ञान के उपदेश से निवृत्त नहीं हो सके है, सोई व्यास जी महाराज ने भी कहा है। आवृत्तिर साकृत उपदेशात श्रोतब मंतब इत्यादि श्रुति के विषय बारंबार उपदेश करा है, इस कारण श्रवण मननादि बारंबार करने चाहिए। इस प्रमाण के अनुसार अष्टावक्र मुनि उत्सत वासना ऊंख त्याग करते हुए बारंबार अद्वैत भावना का उपदेश करे हैं कि अब हम अहम इति ब्रह्म अथ ब्रह्म अंतरम पावम मुक्ता आत्मानम कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभाव भाव परिभाव भाव अद्वैतम परिभाव मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं हैं, मैं सुखी नहीं हूँ दुखी नहीं हूँ बूढ़ा नहीं हूँ, इन बाहज और अंतर की भावनाओं का त्याग करके कूटस्थ अर्थात निर्विकार बोध रूप अद्वैत आत्म स्वरूप का विचार कर अनादि काल का जय देवमान एक बार उपदेश करने से निवृत्त नहीं हुए है, इस कारण उपदेश करे हैं कि हे पुत्रक देवमान देवमान पाशेन चिरम बद्धा असी अता अहम बोधा इति ज्ञान खंडेन तम निहकृत सुखी भव। शेष अनादि काल से इस समय पर्यंत के देवमान रूपी फंसी करके तू दृढ़ बंधा हुआ है, अनेक जन्मों में भी उस बंधन के काटने को समर्थ नहीं होएगा, इस कारण शुद्ध विचार बारंबार करके मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा रूप ज्ञान रूप खड्ग को हाथ में लेकर उस फंसी को काट कर सुखी हो। केवल चित्त की वृत्ति का निरोध रूप समाधि ही बंधन की निवृत्ति का हेतु है। इस पतंजन मत का खंडन करे हैं। हे शेष त्वं वस्तुता स्वप्रकाशा निरंजना निसंगा निष्क्रिया असि तथापि हे ते बंधा अयम एव यत समाधम अनुतिष्ठति तिष्ठसि। पतंजलि योग शास्त्र में वर्णन करा है कि जिसके अंतःकरण की वृत्ति विराम को प्राप्त हो जाती है उसका मोक्ष होता है, सो यह बात कल्पना मात्र ही है, अर्थात तू अंतःकरण की वृत्ति को जीत कर सावकल्प हठ समाधि मत कर, क्योंकि तू निसंग क्रिया रहित स्वय प्रकाश और निर्मल है। इस कारण संकल्प हठ समाधि का अनुष्ठान भी तेरा बंधन है। आत्मन सदा शुद्ध मुक्त है। तिस कारण भ्रांति युक्त जीव के चित्त को स्थिर करने के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करने से आत्मा की हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है। जिसको सिद्ध लाभ अर्थात आत्मज्ञान हो जाता है, उसको अनुसमाधि के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन है। इस कारण राजा जनक के प्रति अष्टावक्र वर्णन करे हैं कि तू जो समाधि का अनुष्ठान करे हैं यही तेरा बंधन है। परंतु आत्मा ज्ञान विहीन पुरुष को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त समाधि का अनुष्ठान करना आवश्यक है। अवशेष की विपरीत बुद्धि को निवारण करके करने के निमित्त गुरु उपदेश करे हैं। हे शिष्य, इदं विश्वं त्वया व्याप्तं त्वयि प्रोक्तं यथार्थता शुद्ध बुद्ध स्वरूपा त्वं शुद्र चित्तां मा गम। हे शिष, जिस प्रकार स्वर्ण करके कटक कुंडल आदि स्वर्ण करके व्याप्त हुए हैं, इसी प्रकार यह दृश्यमान संसार तुझ करके व्याप्त है। और जिस प्रकार मृतका के विषय काट शराब आदि करा हुआ हुए हैं, इसी प्रकार जस पूर्ण संसार तेरे विषय प्रोत है। हे शिष, यथार्थ विचार करके तू सर्व प्रपंच रहत हैं तथा शुद्ध बुद्ध चिद रूप हैं। तू चित की वृत्ति को विपरीत मत कर। इस देह के विषय शेह शाह वर्मी तथा शाह भाव बकार प्रतीत होते हैं, सो तू नहीं है, किंतु उनसे भिन्न और निरपेक्ष अर्थात इच्छा रहत हैं। तहां शेष आशंका करे हैं कि हे गुरु, छह वर्मी और छह भाव वकारों को विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तहां गुरु वर्णन करे हैं।